नरेंद्र अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही वहां से गुस्से से तिलमिलाता हुआ चला गया और उसे इस तरह अपने पैर पटक कर जाते देखकर पल्लवी उसके पीछे पीछे चली गई और अभिनव और कनक वहीं पर खड़े थे। अपने चाचा जी के चले जाने के बाद अभिमन्यु ने अभिनव के सामने आकर कहा, देखिए अभिनव, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका इस राज परिवार से कोई लेना देना नहीं है और हम आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं रखना चाहते, इसीलिए हम बस यही चाहते हैं कि आप दोनों यहां से चले जाएं। अभिनव उसकी बात सुनकर अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसके ऐसे देखने पर अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आए थे, तो हम आपको वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि उसके बाद आप यहां से चुपचाप चले जाएं और दोबारा कभी यहां पर लौट कर ना आएं, क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर होगा। अभिनव ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो कितने पैसे दोगे तुम मुझे? अभिनव के इस सवाल पर अभिमन्यु ने तुरंत ही अपनी कोट की जेब से चेकबुक निकाली और उस पर 10 करोड़ लिखकर उस चेक को अभिनव की तरफ देते हुए कहा, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए इतने काफी होंगे। अभिनव 10 करोड़ के चेक को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया था और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि वो बार बार जीरो गिनता हुआ कन्फर्म कर रहा था कि 10 करोड़ हैं या फिर 1 करोड़। और कनिका ने जैसे ही 10 करोड़ के चेक पर अभिमन्यु की साइन देखी तो उसने अभिनव के कंधे से अपना कंधा टकराया और आंखों के इशारे से ही उसे वो चेक लेने के लिए कहा। अभिनव ने तुरंत उस चेक को अपने हाथ में लिया और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना बोलकर उसने उस चेक को जल्दी से अपनी जेब में रख लिया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर एकदम सीरियस अंदाज में कहा, ठीक है, बस अपना वादा याद रखना। अभिनव ने हां में अपना सिर हिलाया और कनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। इतना बोलकर अभिनव का हाथ पकड़कर वहां से जाने के लिए निकलने लगे। अभिनव खुश नहीं लग रहा था। कनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? अभिनव ने मायूसी से कहा, क्या यार, तुमने 10 करोड़ लिए, मैं तो सोच रहा था कि यहां का खजाना उड़ा ले जाते। कनिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, जितना मिल गया है उतने में ही खुश रहो, और तुम्हें क्या लगता है, इस अभिमन्यु के आने के बाद हम यहाँ पर और कुछ कर सकते थे? तुमने देखा नहीं वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और वैसे तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक लंबा हाथ मारा है। अभिनव कनिका की तरफ देखने लगा। तभी कनिका ने उसके कान के पास जाकर कहा, तुम्हारी मुंह बोली माँ ने मुझे जितने जेवर शादी में पहनाए थे मैंने उसमें से एक भी जेवर उसे वापस नहीं किया, वो सारे मेरे पास ही हैं। जैसे ही कनिका ने ये बात कही, अभिनव ने खुश होते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ये हुई ना मेरे पार्टनर वाली बात, चलो अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं, कहीं उन लोगों को जेवर के बारे में याद ना आ जाए। इतना बोलकर वो दोनों अभिमन्यु के राज्याभिषेक से पहले ही उस राजमहल से बाहर चले गए। वहीं नरेंद्र और पल्लवी दोनों एक दूसरे के साथ अपने कमरे में बैठे हुए थे और उन दोनों में से कोई भी खुश नहीं लग रहा था। बाहर अभिमन्यु के राज्याभिषेक की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। अभिमन्यु अपने कमरे में तैयार होने के लिए जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि इप्सिता आज पहली बार बिल्कुल राजस्थानी लुक में तैयार हुई थी। उसने पूरी राजस्थानी ज्वेलरी पहन रखी थी जिसमें से आधी चीजें तो उसे पहननी भी नहीं आती थी, इसलिए अर्पिता उसकी हेल्प करते हुए उसे राजस्थानी मांग टीका पहना रही थी। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल हैरानी से फटी रह गई, क्योंकि उसने इप्सिता को इस तरह के ट्रेडिशनल लुक में इमेजिन भी नहीं किया था। लेकिन इप्सिता खुद में ही इतना ज्यादा उलझी हुई थी कि उसने अभिमन्यु पर ध्यान ही नहीं दिया और अभिमन्यु भी वहीं पीछे चुपचाप खड़ा होकर उसे ही देखने लगा। कुछ मिनट बाद अर्पिता की नजर अभिमन्यु पर गई और उसने जैसे ही अभिमन्यु को देखा तो वो बोली, अरे भाई साहब, आपके राज्याभिषेक का टाइम हो गया है, जाइए आप भी जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हमें भी आज ट्रेडिशनल कपड़े पहनने पड़ेंगे। वो इप्सिता की तरफ देखकर ही ये बात बोल रहा था। तभी अर्पिता ने कहा, हाँ भाई साहब, यही पहनना है आपको भी। अभिमन्यु आगे बढ़कर आया और उसने भी अपना राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस उठाया और उसे लेकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया और थोड़ी ही देर में अभिमन्यु कपड़े पहनकर बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर निकला, अर्पिता ने उसे देखते हुए कहा, भाई साहब, आपकी पगड़ी रखी है, इसे भी पहन लीजिएगा, अब हम भी जाकर रेडी होते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है, भाभी साहब प्लीज भाई साहब को ये पगड़ी पहनने में थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा। इप्सिता इससे पहले कि कुछ बोल पाती, उससे पहले अर्पिता चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अभिमन्यु इप्सिता के पास आकर खड़ा हुआ और इप्सिता के राजस्थानी लहंगे और राजस्थानी ज्वेलरी को देखकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। तभी इप्सिता उठकर खड़ी हुई और उसने कहा, क्या हुआ अभिमन्यु, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप ट्रेडिशनल ड्रेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती होंगी। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं सोचा था, सोचना चाहिए था ना, वैसे भी हम तो हमेशा और हर तरह के ड्रेस में ही खूबसूरत लगते हैं ना। उसकी इस बात पर अभिमन्यु ने कहा, हाँ ये बात तो है, हमारी वाइफ तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन आज की तो बात ही कुछ अलग है, एकदम अलग रौनक है चेहरे पर, शायद मिसेस राजवंशी बनने का ग्लो है। अभिमन्यु उसकी तारीफ करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ता था, इसीलिए वो उसकी और ज्यादा तारीफ करने लगा। तो इप्सिता झेप गई और उसने बात बदलते हुए कहा, लाइए हम आपको पगड़ी पहनने में आपकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, यहाँ बैठिए। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और उसे वहीं शीशे के सामने बैठा दिया। अभिमन्यु भले ही सामने बैठ गया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इप्सिता को ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर इप्सिता को देखकर एक अलग ही ब्लश नजर आ रहा था। इप्सिता की मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र था। वो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार थी। जैसे ही इप्सिता ने वो पगड़ी उठाकर अभिमन्यु के सर पर रखी, तो अभिमन्यु का लुक बिल्कुल राजा सा वाला लगने लगा। इप्सिता उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आप पर पगड़ी काफी सूट कर रही है। अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाया और इप्सिता भी उसके बालों को ठीक करते हुए उसे पगड़ी पहनाकर बोली, हाँ अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। इप्सिता अभिमन्यु को ऐसे करते देखकर बोली, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए अभिमन्यु, गेट खुला है, अगर कोई आ गया तो कोई क्या सोचेगा। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात नहीं सुनी और उसने इप्सिता को अपने और करीब किया और उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, कोई नहीं आने वाला, आप बेकार में परेशान मत होइए, और सच बताएं तो हमें तो लग ही नहीं रहा हम अपने राज्याभिषेक में कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही तो इप्सिता उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, क्या मतलब है आपका। अभिमन्यु ने इप्सिता के बिल्कुल करीब जाकर उसके काल पर किस करते हुए कहा, आप हमें बहुत प्यारी लग रही हैं, हमारा मन कर रहा है हम आपको छोड़कर कहीं जाएं ही नहीं, और चले भी गए फिर भी पूरा ध्यान तो हमारा आप पर ही रहेगा। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सा खुश होते हुए बोली, हाँ आप भी अच्छे बहुत लग रहे हैं, लेकिन राज्याभिषेक के लिए तो चलना ही होगा ना, चलिए उठिए और हम भी तो वहां पर आपके साथ ही रहेंगे। इतना बोलकर इप्सिता उठने लगी, तभी अभिमन्यु ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे दोबारा अपने ऊपर बिठाते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमें किस दीजिए, उसके बाद हम बाहर चलेंगे।
इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कोई किस नहीं मिलेगी, और अब आप जिद करना बंद करिए और छोड़िए हमें। अभिमन्यु ने इप्सिता के कमर पर अपना हाथ और कसते हुए कहा, जब तक हमें किस नहीं मिलेगी तब तक हम ना ही आपको कहीं जाने देंगे और ना हम कहीं जाएंगे। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप हर बार ऐसे ही अपनी मनमानी करते हैं। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अब क्या करें, आपकी किस चाहिए तो थोड़ी तो मनमानी करनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने इप्सिता के गाल पर किस कर ली। तभी इप्सिता ने कहा, बस कर ली ना आपने किस, अब हैप्पी, चलिए अब बाहर चलते हैं। अभिमन्यु ने अपने गाल पर उंगली रखकर इशारा करते हुए कहा, अब आपकी बारी, जल्दी से अब आप भी हमें किस करिए। इप्सिता अभिमन्यु को ऐसा करते देखकर मुस्कुराने लगी। अभिमन्यु बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मस्ती कर रहा था, उसे इप्सिता की किस चाहिए थी, इसलिए इप्सिता ने भी अब ज्यादा मना नहीं किया और वो धीरे से अभिमन्यु के गाल के करीब आई। वो उसे किस करने जा ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने तुरंत अपना फेस घुमा दिया और इप्सिता जो अभिमन्यु के गाल पर किस करने जा रही थी वही किस अभिमन्यु के होंठ पर हो गई और अभिमन्यु शरारत से मुस्कुराने लगा। इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, दैट्स नॉट फेयर। अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर फिर से किस करते हुए कहा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इप्सिता ने अभिमन्यु के कंधे पर अपना हाथ रखा और वो आराम से उठकर खड़े होते हुए बोली, बस बहुत हुआ, चलिए अब बाहर चलते हैं।